जाऊं कहां तज शरण तिहारी, जाऊं कहां जाऊं कहां जाऊं कहां तज शरण तिहारी, जाऊं शरण तिहारी, जाऊं कहां जाऊं कहां जाऊं कहां शरण तिहारी, जाऊं कहां जाऊं कहां जाऊं कहां जाऊं कहां जाऊं कहां जाऊं कहां जाऊं कहां
धन्यवाद सबको। आज के प्रसंग में पूछना स्वामी जी महाराज ने पांचवें नियम का शुभारंभ कर दिया है, ईश्वर प्रणिधान। इन पांच नियमों में से ये नियम ऐसा नियम है जो एक जीवन में आ जाए तो साधना सफल हो जाए। ईश्वर पर भरोसा, ईश्वर की कृपा पर विश्वास भरोसा, ईश्वर प्रणिधान। आज पहला नियम शुरू करते हैं, शौच। बाह्य शौच एवं आंतरिक भीतरी शौच, बाह्य पवित्रता स्वच्छता एवं भीतरी स्वच्छता। बाहरी स्वच्छता शरीर को साफ सुथरा रखना, पसीने की बू ना आए, कपड़े साफ हों, जहां रहते हैं वह स्थान साफ सुथरा हो, बाह्य स्वच्छता है। झाड़ू पोछा लगाते हैं आप, लगवाते हैं, स्नान करते हैं, धुले कपड़े पहनते हैं साफ सुथरे, शरीर पर कुछ और भी लगाते हैं ताकि शरीर से बू ना आए, ये सब बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत। ये भी जरूरी है, ये किसकी जरूरी है, इसलिए एक भक्त का तो ये विश्वास होता है, मैं परमेश्वर के पास बैठ के तो उपासना करता हूं, उपासना कहा ही उसे जाता है, निकट बैठना, परमेश्वर के निकट बैठने को ही उपासना कहा जाता है। शरीर से बू आए कितनी शर्म की बात है, या तो आप परमात्मा को परमात्मा जीवंत नहीं समझते, यदि समझते हैं तो फिर शरीर से बू आएगी तो क्या परमात्मा को महसूस नहीं होगा कि मेरा बच्चा गंदा है, इसे साफ रहना नहीं आता। भक्त इस भावना से अपना आप बाह्य स्वच्छता जिसे कहा जाता है वह अपने आप को स्वच्छ बना के रखता है। पर इससे कहीं महत्वपूर्ण है भीतरी स्वच्छता। बाहर स्वच्छ ना भी हो तो जैसे बच्चा गंदा होता है, बाहर से खेल के आया है, गंदगी से लथपथ हो जाता है, कभी नाक बहता है, कभी कुछ होता है इत्यादि इत्यादि, मां स्वयं साफ कर लेती है। भीतर का कोई क्या करे, ये मां भीतर का तो कुछ नहीं कर सकते। भीतर की साधना ही तो साधना है, भीतर की स्वच्छता ही तो महत्वपूर्ण स्वच्छता है। आज गुरु महाराज कहीं उपदेश दे रहे थे, अनेक शिष्य बैठे हुए थे, वर्णन चल रहा था, स्वच्छता ही जीवन का सार है। इंग्लिश में आम लोगों ने सुना हुआ होगा, बच्चों ने सुना हुआ है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ऐसा ही गुरु महाराज अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, कहा कि स्वच्छता जीवन का सार है। एक शिष्य ने इस वाक्य का ये सार समझा, ये अर्थ समझा, बाह्य स्वच्छता, अतएव अपने काम में जुट गया है। दूसरे शिष्य ने वास्तविकता समझी तो वह आंतरिक स्वच्छता में चला गया है। बाह्य स्वच्छता वाले ने बाहर अपनी जगह पर झाड़ू पोछा लगाना शुरू किया, अपने कपड़े इत्यादि साफ रखता है, धीरे धीरे और जो सहपाठी थे उन्होंने भी अपना काम इसे बताना शुरू कर दिया, सहर्ष उन सबका काम कर देता है। कभी रोष नहीं, कभी किसी प्रकार की कोई गलानी नहीं, कोई अफसोस नहीं, जो जिसने कहा कर दिया, नाम पड़ गया स्वच्छता कर्मचारी। लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं, कोई जमींदार कहता है, कोई कुछ कहता है, उससे कोई परवाह नहीं, वह बहुत लगन के साथ निष्ठा के साथ अपना काम कर रहा है। सारे आश्रम की सफाई अकेला व्यक्ति करता है, कोई मत करता है नहीं करता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह लगन से निष्ठा से काम कर रहा है। और उसे पाठी कपड़े धोने के लिए कहते हैं धो देता है, अपना कक्ष साफ करने के लिए कहते हैं कर देता है। गुरु महाराज की बात पर विश्वास, उन्होंने कहा था स्वच्छता जीवन का सार है, जितना वह समझ पाया उसके अनुसार वह कर रहा है, इतना ही समझ पाया। समझ तो अपनी अपनी है ना, क्या किया जाए उसमें, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, इतना ही समझा उस युवक ने, उस शिष्य ने, सो कर रहा है, निष्ठापूर्वक कर रहा है। 10 साल बीत गए, छोटा अरसा नहीं, 10 साल तक सिर्फ आश्रम की अपनी और अपने इर्द गिर्द की सफाई की है और कुछ नहीं, मानव पाया कुछ नहीं है अभी तक बाह्य स्वच्छता के अतिरिक्त। दूसरे 10 साल में अपने आप को इतना भीतर प्रवेश कर लिया है, इतना भीतर प्रवेश कर लिया है, अपना अंतःकरण, अंतःकरण के बीच जो दरारें इत्यादि हैं सबकी सफाई कर रही है। अंतःकरण पूरे का पूरा, अंतःकरण चतुष्ट पूरे का पूरा शुद्ध हो गया है उसका, किसी प्रकार की कोई मैल कुचैल अंदर नहीं रहने दी उसने, तो चेहरा चमकने लग गया है, भीतर बाहर झलकने लग गया है, अंदर की स्वच्छता बाहर चेहरे पर एक अद्भुत सी आभा है, रौनक है चेहरे पर, शांति है, आनंद है, देख के प्रसन्नता होती है, बात करने को मन करता है इत्यादि इत्यादि, लेकिन वह तो मौन हो गया हुआ है। अपने आप को उसने अति स्वच्छ कर लिया है, अहम शून्य हो गया है, अपने अहम को मार डाला हुआ है उसने, अतएव विशेष बनने की कोई चाह नहीं, मुझे प्रदर्शन करने की चाह नहीं, विशेष बनने की कोई चाह नहीं, न एक सामान्य से भी छोटा अपने आप को मानने वाला साधक बन गया है। मैं तो सबसे छोटा हूं, मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई योग्यता नहीं है। एक निर्भिमानता की चिन्ह है। यदि ईमानदारी से आदमी हम थोड़ा सा जाप और उससे अधिक कर लेते हैं तो हमारा दिमाग आकाश को छूने लग जाता है, थोड़ा सा ध्यान अच्छा लगने लग जाता है, थोड़ा सा अच्छा गाने लग जाते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है, इत्यादि इत्यादि। ये कोई इसी जगह की समस्याएं नहीं, रोग नहीं, ये सर्वत्र विद्यमान है। जो कह रहा है उसके अंदर भी भारी रोग भरा पड़ा है रोगों से। ये रोग सब जगह सर्वत्र पाए जाते हैं, सार्वभौमिक है ये रोग। इस व्यक्ति ने, इस साधक ने साधना कर करके तो अपने इन सुख रोगों को दूर कर दिया है, बिल्कुल निरोग हो गया हुआ है। हृदय में दया आ गई है, प्रेम आ गया है, करुणा आ गई है, क्षमा आ गई है, सद्गुणों से हृदय को संपन्न कर लिया हुआ है। देवी जब प्रेम हृदय में आता है तो वह इतनी ठाठी मारता है कि आप दिए बिना रह नहीं सकते, आप किए बिना रह नहीं सकोगे। ये छिपाई छिपता नहीं है, कभी छिप ही नहीं सकता। ये प्रेम दिव्य प्रेम है, ये परमात्मा का प्रेम है, ये साधारण प्रेम नहीं जिसे लस्ट कहा जाता है, शरीर का प्रेम नहीं है, ये तो आत्मा का प्रेम है, इसे छुपाया नहीं जा सकता। इस युवक का हृदय प्रेम से भर गया है, प्रेम संबंधी जितने सद्गुण होते हैं उन सबसे भी भर गया है, बहुत सहनशील हो गया है। किसी ने कहा इधर से सुना, इधर से निकल दिया, वाह राम वाह, हर जगह सब कुछ वही वाह दिखाई देता है, प्रसन्नता। आज आपने तप के अंतर्गत मानसिक तप का प्रसन्नता, हर वक्त प्रसन्नता, आनंदित भीतर बाहर बाहर प्रसन्नता ही प्रसन्नता, ये मानसिक तप है जो उसने किया है। 10 साल की तपस्या के बाद आज सूर्य की साधना का अपना नियम निभाने के बाद गुरु महाराज को प्रणाम करने के लिए नियम था। दिन की साधना के बाद सुबह जो साधना की उसके बाद नियम था गुरु महाराज के चरणों में जाके प्रणाम करना, आज भी गया है। संयोग की बात देखिए, परमेश्वर के खेल देखिए, आज वही सफाई कर्मचारी रास्ते में मिल गया है। आज पांव वर्ष में थम गए इस युवक के, इस तपस्वी के पांव वही थम गए, आगे जाने को मन नहीं किया। गुरु महाराज के पास बात नहीं जाऊंगा, पहले इससे बात करूंगा आज। मित्र, तूने भी तपस्या की है, मैंने भी तपस्या की है। तूने बाह्य स्वच्छता की तपस्या की है, मैंने भीतरी स्वच्छता की तपस्या की है। जमीन आसमान का अंतर है। निष्ठा से की है तूने, लगन से की है तूने, मन में उसके लिए सम्मान है, किसी की कोई परवाह नहीं करी उसने, लगन से काम किया है 10 साल तक। अपमान इत्यादि छोटा काम है, घटिया काम है, इस बात की परवाह नहीं की, ये भी कोई छोटी बात नहीं है, 10 साल तक कहने को होते हैं। मित्र, बाह्य सफाई से मोक्ष नहीं मिलने वाला। आज गंभीर बात, सत्य बात, वास्तविकता उसके सामने प्रकट हो रही है। बाह्य सफाई से तुझे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होने वाली, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने वाली। मुक्ति की प्राप्ति होगी भित्ति सतन से, बाहर बहुत हो गया, अब भीतर जाना शुरू कर। तू जा सकता है, तेरे अंदर समर्थ है, तू जा सकता है। तो गुरु महाराज की बात को पूरी ढंग से समझा नहीं है, अधूरा समझा है। भीतर प्रवेश कर, भीतर प्रवेश करने से तेरे सामने सत्य खुलेगा, तेरे सामने ईश्वरीय भेद खुलेंगे, तू परमात्मा के बारे में जानने लग जाएगा। जो हम हमारी जिज्ञासा है, जो हमारी खोज है, जिसके लिए हम यहां आए हैं। खोज करनी है और फिर प्राप्ति करनी है, जिस काम के लिए आए हैं वह बाह्य स्वच्छता से नहीं होने वाला। भीतर प्रवेश कर, भीतर जा, ध्यान में बैठ, अब कुछ विराम कर, आराम कर, विश्राम कर, वह सब कुछ अंदर है, बाह्य नहीं है। बाहर तो थकान ही थकान है, भीतर विश्राम ही विश्राम है, शांति ही शांति है। वाशिंगटन की बात है, एक भारतीय संत प्रवचन करने के लिए वहां गए हुए थे सत्संग के लिए। थोड़े ही लोग सुनने वाले होते हैं, अधिक से अधिक 50। बहुमंजिली बिल्डिंग्स, एक बिल्डिंग की कई कई मंजिलें, कहीं ऊपरी मंजिल पर सत्संग हो रहा है। मानो अमृतवाणी का पाठ होगा, प्रवचन चल रहा है। भूंचाल आ गया, भूकंप, झटका, झटका लगते ही सबके सब श्रोता उठे, भागे अपनी जान बचाने के लिए। किसी ने लिफ्ट की भी खोज नहीं की, सीढ़ियों के द्वारा नीचे की ओर भागे, जान बची हमारी। संत बेचारा वहीं बैठो, नीचे पहुंचते पहुंचते तूफान की, भूकंप की ड्यूरेशन बहुत थोड़ी थी, सब कुछ नॉर्मल हो गया। श्रोता पछताने लगे, ऐसे ही तकलीफ की, भूकंप तो खत्म हो गया हुआ है, सब कुछ सुरक्षित है, सेफ है बिल्कुल, चलो फिर सत्संग के लिए चलते हैं। जाके श्रोता बैठ, संतरे जहां छोड़ा था वहीं से प्रवचन को फिर शुरू कर दिया। संत वही बैठे हुए हैं, आंख बंद, देखकर श्रोता आ गए, आंख खोली, प्रवचन शुरू कर दिया, सत्संग की समाप्ति हुई। श्रोताओं ने पूछा, महाराज भूकंप आया था आपको पता लगा? हां आया था, हम लोग तो भाग गए थे, आप क्यों नहीं भागे? मैं भी भागा था, संत कहता है, पर आप तो यहीं के यहीं बैठे हुए हैं, आप तो कहीं नहीं गए, आप तो यहीं बैठे हुए हैं। जब हम लौटे हैं तो आप आंखें बंद करके बैठे हुए थे, हमने अपनी आंखों से आपको देखा है। संत इतना ही कहता है, आप बाहर भागे थे, मैं भीतर भागा था। जहां आप भागे थे वहां कभी तूफान बंद नहीं होता, खत्म नहीं होता, और जहां मैं भागा था वहां कभी तूफान होता नहीं है, वहां कभी भूकंप आता नहीं है, वहां कभी आंधी उठती नहीं है। मैं ऐसी शांत स्थान तक भीतर प्रवेश कर गया हुआ था, आप बाहर दौड़े थे, मैं भीतर दौड़ा था। आज ये तपस्वी भी बस यही कह रहा है, बंधु भीतर प्रवेश कर, थोड़ा विश्राम कर, बाहर थकान ही थकान है, भीतर विश्राम ही विश्राम है, आराम ही आराम है, शांति ही शांति है, परमानंद ही परमानंद है, भीतर प्रवेश कर। जितना समय तूने बाह्य स्वच्छता के लिए लगाया है, उतना समय तू अब ध्यान अवस्था, गहन ध्यान अवस्था लाभ करने के लिए लगा, परमात्मा तेरा कल्याण करेगा। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, हृदय से बात निकली हुई थी, हृदय में जा घुसी, झाड़ू पोछा वहीं छोड़ दिया, कभी हाथ नहीं लगाया उसके बाद। लगाया है तो सिर्फ जितना आवश्यक था बस। आज अगला दिन है, जगह जगह पर गंदगी पड़ी हुई है, कहां गया शोर मच गया, वह कहां गया सफाई करने वाला? आज सब जगह गंद, हमारा कक्ष भी गंदा है, बाहर आश्रम भी गंदा है, ये जगह भी गंदी, वो जगह भी गंदी, ये पूरा क्रिकेट उठाने वाला कहां चला गया है? सबके मन में प्रश्न, कहीं बीमार तो नहीं, बुखार तो नहीं हो गया इससे, हाई फीवर तो नहीं हो गया? खोजने की कोशिश की, मिल गया, क्या बात है आज? कुछ नहीं, क्यों क्यों सफाई नहीं कर रहे? कहने का बात समझ में आ गई। आज से भीतरी सफाई शुरू, बात मेरी समझ में आ गई, आज से भीतरी सफाई शुरू, बाहर सफाई सुबह और शाम, बाकी सारा दिन भीतरी सफाई पर्याप्त हम सबको शिक्षा देता है। जीवन तपो में जीवन हो गया अब से, बाहर सफाई तपस्या नहीं है, भीतरी सफाई तपस्या है। जीवन तपोनिष्ठ हो गया, जीवन तपो में हो गया, भीतर ही भीतर जाना शुरू कर दिया है। बाहर की आंखों पर जो पट्टियां बंधी हुई थी, जो पर्दे लगे हुए थे, सब उठ गए। अब आंख खुल गई, भीतर ही भीतर जाना शुरू कर दिया है। ऐसे हुआ, स्वप्न भरी रात, आंख खुलते ही सारे के सारे स्वप्न टूट गए, खत्म हो गए। हल्का फुल्का महसूस करने लग गया है, मन सारे का सारा बोझ दिमाग से उतर गया। कुछ वर्ष की तपस्या के बाद कहते हैं इस साधक अब देने योग्य हो गया है, बांटने योग्य हो गया है। परमेश्वर ने थोड़े ही समय में इसके भीतर को इतना भर दिया कि अब ये औरों को बांटने योग्य हो गया। इससे पहले तो कुछ नहीं था, पर 10 साल तक बैकअप किया था, लेकिन देने योग्य तो कुछ नहीं था, अब देने योग्य हो गया है, लोगों को समझाने योग्य हो गया है, लोगों को ज्ञान दान, गुणदान इत्यादि देने योग्य हो गया है। ये सतक अपने पीछे चलाने योग्य हो गया है। सतक कब? जब भीतर तपस्या करके, भीतर प्रवेश करके, तो असली जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त कर लिया, तब जो चीज आपके पास है ही नहीं, बांटोगे कहां से दोगे? गरीब आदमी किसी की पैसे से क्या सहायता कर सकता है? उसके पास पैसा है ही नहीं। देने योग्य बनना है तो पहले अपने आप को कमाई करो, कमाओ, कमाओगे, अपने पास होगा तो दूसरे को दे सकोगे कुछ। आज ये बाहर सफाई करने वाला भीतरी सफाई करने के बाद बांटने योग्य हो गया है, दूसरों को सुख बांटने योग्य, दूसरों को शांति बांटने योग्य, दूसरों को आनंद बांटने योग्य हो गया हुआ है, दूसरों को दूसरों के अंदर भक्ति का संचार करने योग्य हो गया है। मानो ऐसा जुकाम लग गया है कि दूसरों को जुकाम देने योग्य हो गया हुआ, फैलाने योग्य हो गया हुआ है। ऐसा प्रेम रोग लग गया कि दूसरों को रोग देने योग्य हो गया हुआ है। प्यारे जख्म भी साधक चुनो, इस शौच की चर्चा को कल भी आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।